السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے مجلس کا وقت تھا مولانا سے، ہم بھی مجلس میں تھوڑی دیر شرکت کریں گے بول کے آ گئے تھے، لیکن مولانا نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی فرما دیجیے، تو اس اعتبار سے مجھے تعمیل حکم میں بیٹھ جانا پڑ گیا ہے. جی،
My dear respected guests, I apologize to you that this is the time of your weekly gathering in Majlis, and I had come to also take part of this gathering, but then when the Imam had seen me, he then had pushed and requested that Mufti Saab please deliver the lecture, and so out of just adab of accepting the request, I decided to do so.
جس طرح کی باتیں آپ حضرات کو سننے کی عادت ہے، جس طرح کے علوم کو، ہم تو طالب علم ہیں، ہمارا ذہن تو وہاں تک جانا مشکل ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کچھ بات ذہن میں آئی تو عرض کرنے کی کوشش کریں
گے.
شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ گزشتہ کا موضوع جو ہے حال اور مقام سے متعلق تھا.
The previous gathering dealt with the difference or the connection between حال, condition, مقام, station.
صوفیہ کی اصطلاح میں حال مقام تلوین ہوتا ہے.
In the technical terminology of the people of the Salaf and Sufiya, hal maqam had a very specific type of
talween, rang badalne ka.
It has a decorative change, the changing of color, that's what it refers to.
Aur maqam jo hota hai wo ashab tamkeen ka kaam hota hai.
And the position of maqam,
tamkeen,
the people of maqam, they're known as to have that characteristic. The ashab al-tamkeen are supposed to be those individuals.
عام طور پر حال جو ہوتا ہے وہ لوامہ کے درجے کی چیز ہے نفس کے.
حال is from the it's related to the nafs al-lawwama position, the blameworthy self.
اور مقام جو ہے وہ اطمینان مطمئنہ کے درجے کی چیز ہے.
And the position of maqam, the station is related with the nafs al-mutmainna, the highest self.
عام طور پر جو ہے ہم اور آپ جو ہے جس جگہ پر ہیں، نہ اصحاب حال میں سے ہیں نہ اصحاب مقام میں سے ہیں.
In all reality, we're usually not even within the people of hal condition nor the people of maqam station.
کوشش اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صاحب مقام بنا دے. ہم تو امارہ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، نفس امارہ کے مرحلے سے. اس کے بعد آتا ہے لوامہ، اس کے بعد آتا ہے مطمئنہ. مطمئنہ جو ہوتا ہے اطمینان عن مخالفت امر اللہ.
The idea of mutma'inna is that individual has itminan or has certitude, or the individual has a level of sanctity, peace, when it comes to those things that go against Allah subhanahu wa ta'ala.
طبیعت مخالفت پر بھڑکتی نہیں، اللہ کی مخالفت کے لیے مائل نہیں ہوتی زیادہ.
The self or the individual isn't inclined towards going against Allah subhanahu wa ta'ala.
جیسے گھوڑا جس کی تربیت ہو جائے وہ اپنے مالک کی مخالفت کی جرات کم کر دیتا ہے.
Like that horse that's finally been trained, it doesn't no longer goes against the wishes and he doesn't aggress against the master.
مطمئنہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی حزن نہیں ہوتا بلکہ جتنا زیادہ آدمی اطمینان میں ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے خوف میں ہوتا ہے مخالفت کی ہمت نہیں رہتی اللہ پاک کی اسی وجہ سے اس کو مطمئنہ کہتے ہیں اور جو نفس اس اطمینان والی کیفیت میں آ جاتا ہے وہ اصل اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اس سے پہلے اللہ کے خاص بندے میں اس کا شمار نہیں ہوتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی اب تو میرے بندوں میں داخل ہو
The verse of the end of Surah Fajr, Allah Ta'ala, when he says, O you soul at rest, return to your Lord, being pleased and being pleased with. And then he says, فَدْخُلِي فِي عِبَادِي Enter now into my servitude.
کیا مطلب اس سے پہلے کہ جو حالت ہے اس میں اللہ کے بندے نہیں ہیں
What does this mean? Before they were not slaves of Allah.
پوری دنیا کے انسان اللہ کے بندے نہیں ہیں
Isn't it such that all of creation is a servant
سارے بندے ہی ہیں
We're all the servants of Allah.
لیکن بندے بندے میں فرق ہے
There's a difference between slaves.
ایک اللہ کا بندہ ہے کہ میرا پسندیدہ بندہ ہے اب یہ میرے بندوں کی فہرست میں آ گیا اس سے پہلے وہ تو گندوں کی فہرست میں ہے بندوں کی فہرست میں کہاں
you can't get word you can't appreciate the translation so I have to give the translation but the rhyming and the beauty of the language I can't give you but prior to reaching the state they were in the position of those who were away from Allah who were wretched rather than being a slave of Allah
اور ہمیں اللہ کے بندوں میں شامل ہونا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ ایک می بینی خلاف آدمن یہ جو تم دیکھتے ہو آدمیت کے خلاف والی باتیں آدمیوں میں ایک می بینی خلاف فارسی شعر ہے کہ یہ جو تم دیکھتے ہو آدمیوں میں آدمیت کے خلاف باتیں
So the Persian poem is that that which you see displayed by human beings is actually against the nature of human beings.
نیست آدم غلاف آدمن یہ آدم نہیں ہوتے یہ آدم کا غلاف ہے کور ہے
This is not Adam of the human being of Adam علیہ السلام rather a cover
گر بصورت آدمی یکساں بودے احمد و بو جہل ہم یکساں بودے اگر صورت سے آدمی برابر ہوتے احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صورت والے تھے ابو جہل بھی صورت والا تھے
If it was merely based upon appearance, then Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and Abu Jahl are both by appearance human beings.
اس لیے اگر آدمی میں اللہ کی مخالفت کا مادہ جتنا زیادہ ہے تو وہ آدم علیہ السلام کے خاندان سے ہٹ جاتا ہے
When a person has a desired inclination that's great towards going against Allah subhanahu wa ta'ala, then they actually move away from being the children of Adam alayhi salam.
اگرچہ کہ اس کو خونی اعتبار سے نسبت دی جائے انسان کے ساتھ
Even though by blood we're considered human beings.
مگر اللہ پاک اس کو آدم میں شمار نہیں کرتے پھر.
Allah ta'ala will not make them from amongst the children of Adam alayhi salam.
کیونکہ وہ آدم کی صفات پر نہیں ہے وہ شیطان کی صفات پر ہے.
Because they're not on human or Adamic qualities, they're on satanic qualities.
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے بارے میں اس بات کی صفائی دی تھی
اللہ سبحانہ وتعالیٰ towards Prophet Nuh علیہ السلام gave clarity regarding his son.
قال یا ربی ان ابنی من اہلی کہنے لگے میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے میری نسل ہے
Prophet Nuh علیہ السلام cried out to Allah تعالیٰ saying oh Allah my son is from my progeny
وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ
and your promise is true
اور آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں وانت احکم الحاکمین
and you are the one who is going to be you are the most just of all the people of
justice لہذا آپ اس کو بچائیے آپ نے وعدہ کیا ہے مجھے بھی بچائیں گے میرے اہل کو بھی بچائیں گے
and you have promised me that you'll save me and my family
قال یا نوح انہ لیس من اہلک فرما اب یہ تمہارے اب خاندان میں سے نہیں ہے یہ تمہارا اہل نہیں رہا یہ
this is not from your family this is not from your خاندان your family
تو کیا مطلب یہ کہ کیا وہ حرام کی اولاد تھوڑی تھا کوئی
نہیں It's not that he's a child of zina born out of wedlock.
ہاں تو نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہو مگر جب آدمیت نکل گئی شیطانیت آ گئی تو آدم سے رشتہ ختم
But when the Adamic, the human qualities of belief left him, the satanic qualities came in, and he no longer is from that progeny.
إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ کیوں تمہارے خاندان سے نہیں ہے اس کے عمال ٹھیک نہیں رہے
He's not from your progeny because his actions were not representative of being from your progeny.
فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِيدُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ بہت سخت تنبیہ ہے اگر اللہ پاک نہ فرمائے ہوتے تو ہم نبی کے بارے میں ایسے الفاظ بھی نہیں یوز کر سکتے تھے
Allah Ta'ala says a phrase over here that is very strong against his prophet. Had Allah subhanahu wa ta'ala not said it, then we would not say such things about a prophet.
لَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ جس سے آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال مت کرو مجھ سے
Do not ask that which you do not have knowledge regarding.
اور میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جاہل مت بننا
I'm giving you strong advice that you don't become of those who are ignorant.
نبی کو اللہ فرما رہے ہیں اِنِّي أَعِيذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ جاہل مت بننا میں نصیحت کر رہا ہوں آپ کو
Allah Ta'ala is telling a prophet that you do not become amongst those who are ignorant.
نو علیہ السلام فرمایا کہ ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین
اللہ تعالی has said that نوح علیہ السلام was saying that
ربی انی اعوذ بک ان اسالک
my lord really I seek protection that I ask you
ما لیس لی بہ علم
that which I do not have knowledge regarding
و الا تغفر لی و ترحمنی
and if you do not forgive me have mercy upon me
اکن من الخاسرین
really I'll be amongst those who have been lost
اللہ پاک نے معاف فرما دیا علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے خارج کیا اللہ پاک نے حالانکہ نسبی اولاد تھی وہ اس لیے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ صفات پر نہیں رہتے کیونکہ آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے اللہ کے پسندیدہ صفات پر تھے وہ تو جو نہیں رہتے ہیں اللہ پاک ان کو انسانوں کی فہرست سے نکال کر جانوروں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں
Those individuals who take themselves out of the actions and ways of being from the Adamic mean that those who do not continue in the progeny and the lineage of belief, Allah Ta'ala takes them out of that category, makes them from animalistic categories.
इसलिए फरमा उलाइक कल अनआम ये लोग जानवरों की तरह होते हैं.
And that's why Allah Ta'ala says, verily they are like animals.
बलहुम अवल जानवरों से बदतर होते हैं.
Rather, actually, they're worse than animals.
क्योंकि जानवर तो सिर्फ जानवर ही है.
Because an animal is just an animal.
اور یہ انسان ہو کے جانور ہے تو اس لیے اس نے اس سے زیادہ سخت حالت میں اپنے کو ڈالا ہے اور آپ نے کبھی سنا ہوگا شیخ صاحب سے بھی کہ انسانوں میں جو باندی اور غلام کا سسٹم ہے اس کی بیس بھی یہی اس کا سیکرٹ بھی یہی ہے
between a slave woman or a servant there's a certain system that exists
وہ یہ ہے کہ جب آدمی ایمان کے خلاف لڑنے پر آ جاتا ہے چونکہ وہ آدمی اللہ کے خلاف لڑنے پر آ گیا اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے پر آ گیا پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے تو یہ جانور ہے یہ اور جانور کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے اس لیے ایسے انسانوں کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے یہ غلامی کا جو نظام ہے وہ اس کی بنیاد یہ ہے اور یہ قیامت تک رہیں گے یہ ابھی تو اسلام مسلم اسلام اسلامی لین کی لڑائی نہیں رہی تو اس لیے وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا
jihad based on Islamic principles, that's why it's not existing.
ورنہ جس دن وہ صحیح شروع ہو جائے گا اس دن یہ سیٹ اپ بھی سامنے آ جائے گا اس لیے اس کے مسئلے آج بھی پڑھاتے ہیں ہمارے پاس کتابوں میں کیوں اس لیے کہ اگرچہ اس وقت یوز میں نہیں ہے وہ لیکن کبھی یوز میں آ سکتا ہے اس لیے دین کے وہ تمام باتیں پڑھنا پڑھانا پڑتا ہے جو اس وقت چاہے یوز میں نہ ہو لیکن کبھی بھی پیش آ
سکتا
یہ ہے وہ بات جس کو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ تو اب میرے بندوں میں آ جا اس لیے ہر مسلمان کو نفس مطمئنہ بنانے کی فکر کرنا ہے حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قسم بیان کی ہے اس کی وہ امارہ اور لوامہ اور مطمئنہ کے بیچ میں لوامہ کے بعد ملہمہ کی ایک قسم کا اضافہ کرتے ہیں الہام کرنے والا ملہمہ الہام کرنے والا تو تینوں جو نام ہیں پہلے کے وہ قرآن پاک میں ہیں
ان النفس لاماره بالسوء وما ابرئ نفسي. يوسف عليه السلام نے کہا ان النفس لاماره بالسوء.
نفس اماره بالسوء is mentioned at the beginning of the big changes. One has used money, it sounds like ma'a ubarri nafsi, really I have not freed myself. In the nafs la'amaratun bisu, that verily that the nafs that inclines towards evil, then the verse continues.
Har insan ka nafs ammara hota hai, ammara bisu hota hai.
Mankind, we have that nafs of ammaratun bisu inclining towards evil.
Jis baat ko bahut achi tarah samajhna aur samjhana padta hai.
In regarding which we have to understand this and explain it properly.
वो ये है कि जैसे जैसे बच्चा या आदमी बड़ा होता है, मर्द हो या औरत हो, उसका नफ्स भी बड़ा होता है.
As a person begins to get older and bigger, the nafs also grows.
जैसे जैसे नफ्स बड़ा होता है, वैसे वैसे बुराई का हुक्म करता है.
And as the nafs gets bigger, it orders more and commands more towards doing wrong.
ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि हमारे पास, क्योंकि हम काउंसलिंग करते रहते हैं तो बच्चों के बारे में पेरेंट्स आके बोलते हैं, हमारा बच्चा बड़ा अच्छा था, बोले छोटे रहे तो बड़ा प्यारा था, हमारी बच्ची बड़ी अच्छी थी. बोले अरे भाई, जब थी वो, जबकि उसका नफ्स छोटा था, अब वो बड़े हो रहे हैं, उनका नफ्स बड़ा हुआ, जैसे बड़ा हुआ तो हमारा बिस्सू होगा वो.
Their nafs, as they've gotten bigger, the nafs of Amaratun Bissu has also gotten bigger. It's commanding more towards evil.
हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो पहली वाली बात थोड़ी रहेगी. और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होंगे शायद दीन की तरफ जाएंगे. दीन की तरफ खुद से हम नहीं जा सकते, है ही नहीं हमारे अंदर वो चीज. इंसान में दो चीजें होती हैं, एक फितरत और एक नफ्स. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल वलद युलद अल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है. हर इंसान की फितरत जो है ना, वो अल्लाह की बात लेने की काबिलियत अपने अंदर रखती है. और अल्लाह पाक ने ये चीज, ये बीज के तौर पर इंसान के अंदर डाला है. अलस्तु बिरब्बिकुम जो था ना, वो वही बीज था.
That on that day when Allah Ta'ala asked me, when Allah said, am I not your Lord?
तो उसमें सबने कहा था कि बला, क्यों आप हमारे रब ने, बराबर आप हमारे रब हैं.
And everyone responded by saying, of course you are our Lord.
तो ये बात लेने वाली बात इंसान में डाल दी गई है.
And so this, accepting this, having the capacity to accept this,
इस लेने वाली बात ही को फितरत कहते हैं.
And this capacity is known as
फितरत. मगर एक बात इसमें और है, वो ये कि फितरत की खुसूसियत प्लेन तख्ती की होती है.
And but there's something to recognize that fitra is like a plain empty board.
तो वो जैसे खैर को लेता है, शर को भी वैसे ही ले सकता है.
Just as it can now be filled with goodness, it can also be filled with evil.
अब जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, वैसे वैसे नफ्स ग्रोथ होता है.
And as a person grows, the nafs also grows.
तो जब नफ्स आता है तो वो नेकी की तलकीन नहीं करता.
And when the nafs comes, it doesn't begin to repeat or call towards goodness.
चाहे वो किसी आलिम की औलाद हो, चाहे किसी वो डॉक्टर इंजीनियर की औलाद हो, चाहे किसी शेख और दाई की औलाद हो, कोई हो, इससे कोई बहस नहीं होती. अरे हमने बड़े बड़े लोगों के देखे, बड़े बड़े मौलाना लोगों की औलाद को देखा बिगड़ते हुए. ये तो सबके साथ ये मामला है, और ये हमारे साथ में भी मामला है, हर इंसान के साथ ये मामला है. वो ये है कि शरीयत का जो, शरीयत जो है ना, वो हमारे नफ्स के खिलाफ है. अल्लाह के अहकाम हमारे नफ्स के खिलाफ है. और जब हम अपने नफ्स की मुखालफत करके अल्लाह के हुक्म को लेते हैं तो मशक्क़त पेश आती है. इस मशक्क़त को अरबी में जुहद कहते हैं. इसी को मुजाहिदा भी कहते हैं. और ये सबर के बगैर नहीं हो सकता, ये मशक्कत बर्दाश्त के बगैर नहीं हो सकता. लोग समझते हैं कि अंदर से उसको मजहब का रुझान होना चाहिए, अंदर से उसको नमाज का शौक होना चाहिए, अंदर से उसको दीन के काम का शौक होना चाहिए. वो इंसान के मिजाज से वाकिफ नहीं होने की बात है. शरीयत के खिलाफ ही हुक्म देगा, अम्मारा बिस्सू कहते हैं उसको है। लेकिन जब आदमी की थोड़ी सी तरबियत होती है और ईमानी माहौल मिलता है, ईमानी मुजाकिरे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत होती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत सामने आती है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, अपने फ्यूचर के बारे में डर पैदा होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे हाथ में नहीं है कायनात का निजाम, वो तो अल्लाह के हाथ में है, तो अभी का मेरे हाथ में नहीं है तो फ्यूचर का मेरे हाथ में कहाँ से है, लिहाजा जन्नत और जहन्नम मेरे हाथ में नहीं है, कबर का अजाब सवाब मेरे हाथ में नहीं है, दुनिया में हालात का मुआफिक होना नहीं होना ये भी मेरे हाथ में नहीं है, तो एक किस्म की नफ्स में बुराई का हुक्म देने में रुकावट आती है, तो फिर जब थोड़ी बहुत तबीयत नेकी की नेकी को कबूल करने वाली बनती है, मगर चूंकि उसको आदत नहीं होती बुराई छोड़ने की, तो होता यह है कि वो कभी जो है इधर आता कभी उधर जाता,
as a result it now begins to sway from one side to another,
तो मलामत करता है,
and it now becomes blameworthy,
जब कर लेता है अल्लाह के हुक्म को पूरा तो खुश होता है,
when it does what Allah Ta'ala wants becomes happy,
और जब नहीं कर पाता तो अपने आप को कोड़ता है, गुड बैड फील करता है,
and when it doesn't do what Allah Ta'ala wants it begins to reproach or blame itself,
तो उसी मलामत करने से लवामा है,
and from this idea of blaming itself it becomes masculine,
तो ये जो मलामत वाली कंडीशन होती है इसमें तब्दीली होती है,
and this blameworthy position is always switching back and forth,
और हाल के माने बदलने के हैं,
and hal, the meaning of hal is to change,
तो हाल और मकाम की जो बात मौलाना शेख ने फरमाई आपसे, वो हाल का मतलब ये कि तब्दीली उसमें आती रहती है,
and what we had discussed before about hal, it refers to changing of states,
इसी तब्दीली में लौन है, रंग है, कभी वो रंग कभी ये रंग,
and then this hal has a certain color or experience,
उस वजह से उसको अस्हाबे तलवीन कहते हैं,
this is why it's अस्हाबे तलवीन,
ये लवामा तलवीन की हालत को कहते हैं, लेकिन फिर ये कश्मकश चलती ही रहती है, इसके लिए शेख चाहिए, क्योंकि अगर शेख नहीं रहा तो आदमी मायूस हो जाता है, मायूस होकर छोड़ देता है, और मायूसी कुफ्र है, जब शेख होता है तो उसको मायूस होने नहीं देता, उसको जो है ना वो धीरे धीरे जो उसने किया है उस पर तसल्ली दे के, जो नहीं किया उसकी तालीम दे के उसको और इधर खींचता रहता है,
तालीम
देते,
तो इस तरीके से जब उसको तसल्ली मिलती है तो फिर वो मायूसी से बचता है, अगर शेख नहीं मिला उसको और अच्छे काम पे थोड़ा बहुत लग रहा है तो फिर वो तकबर में उजुब में आ जाता है, और वो पहले जितनी बुराई में था उससे बड़ी बुराई में पड़ता है, क्योंकि किसी नेक काम को करके उसका कैंडिडेट लेना ये गुनाह कबीरा है, इसमें शराब में और इसमें फर्क नहीं है, बल्कि ये शराब से बड़ा है, तो अगर शेख नहीं रहा तो तलवीन की जगह पर आकर आदमी गड़बड़ में आ जाता है, कोई नहीं बचा सकता उसको, इसलिए बगैर शेख के सुलूक तय नहीं होता, बल्कि यूं कह लीजिए बगैर शेख के तरबियत नहीं होती, बल्कि यूं कह लीजिए कि बगैर शेख के आदमी दीनदार नहीं होता, और जो आदमी बगैर शेख के दीनदार बनता हुआ आपको दिखता है उसको गलत फहमी हो रही है, हुआ नहीं, वो
कभी
करोड़ों लाखों बंदों में से किसी एक के साथ एक्सेप्शन होता है, वरना उमूमन नहीं होता। और जिसके साथ एक्सेप्शन होता है उसका भी बैकग्राउंड होता है। बुजुर्गों के आपने नाम सुने होंगे, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, अपने चार सिलसिलों में से एक सिलसिला शहाबुद्दीन सुहरावर्दी का है। एक बहाउद्दीन नक्शबंदी का है, जिसको हमारे शेख भी जो है ना नक्शबंदी तारीख पर ही आप लोगों के बारे में मुजाकरा करते रहते हैं। और एक कादरी होता है और एक चिश्ती होता है। तो हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने फरमाया कि दफातन एक लतीफ़ा या गैबी आया और मेरी आदत बदल गई। उनके साथ ये हुआ है, मगर ये नहीं है कि उससे पहले वो मुत्तकी परहेजगार नहीं थे और उनका बैकग्राउंड जो है ना दीनदार नहीं था, इसलिए मुजाहिदा तरबियत बड़ों की उनके घर की सब थी। मगर जिस मकाम पे वो गए थे वो लतीफ़े गैबी से चले गए थे, क्योंकि वो तो मकाम इज्तिहाद पे थे, मशीखत के मकाम पे थे, सिलसिले के बानी बने हुए।
He was from the foundational pillars of Tariqa. He was a Mustahid.
तो इसलिए इस लवामा की जगह पर शेख चाहिए होता है।
So when we're at the stage of Lawama,
क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें हजारों किस्में होती हैं, जिसमें जिस लाइन से आदमी धोखा खाता है इसमें। नफ्से नफ्से अम्मारा के लश्कर बहुत हैं। शैतान इसके लश्कर का बहुत बड़ा वो है, विंग कमांडर है। हाफिज इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीर की है। उन्होंने कहा कि बहुत शार्ट तकरीर होंगी, अब आप मजमून कौन सा लेके निकल गए, वो तो बहुत लंबा है। खैर मैं ये अर्ज करूँगा कि इस मकाम पर जो कि मैं और आपके हैं, हम लवामा की जगह पर भी कह सकते हैं किसी दर्जे में कि हमारा नफ्स मलामत भी करता रहता है, यार ये क्या बेहूदगी है, ये क्या बदतमीजी है। हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं थानवी के खलीफा, ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब, बड़े अजीब व गरीब उनके अशार होते हैं, तरबियत के मामले में बहुत ही पहुंची हुई चीज़ थी वो। उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है, उन्होंने कहा कि नचित कर सके नफ्स के पहलुओं को, नचित कर सके, चित करना डाउन करना रिसलिंग के अंदर, नचित कर सके नफ्स के पहलुओं को,
overtake or wrestle or pin down the nafs.
No, we couldn't pin down.
Oh, we couldn't pin down.
तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले। अगर तू नहीं नफ्स को चित कर सक रहा, तो अपने हाथ पांव एकदम ढीले भी मत डाल।
If you cannot pin and overcome your nafs, don't just fall back and without making effort.
Give up.
अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की। अरे इससे कुश्ती तो है, इससे रेसलिंग है, लॉन्ग लाइफ। कभी तू दबा ले, कभी वो दबा ले, कभी नफ्स की सुन लो, कभी अल्लाह की सुन लो, ऐसा तो चलते रहने दो कम से कम। हमेशा नफ्स की चल रही, ये क्या है? अगर हमेशा नफ्स की चलती रही तो हम हार जाएंगे, और हमारा नफ्स लवामा से मुतमईना की तरफ कभी सफर नहीं करेगा। हम हाल से मकाम की तरफ कभी जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए नफ्स के अमारियत को भी दूर करना है, लवामिया से भी सफर करना है, और उसके बाद मुतमईना में दाखिल होना है, और ये बहुत लंबी जर्नी है। इसको कितना टाइम चाहिए? इसको अमूमन एक लाइफ चाहिए, इसलिए ये लाइफ दी गई है, और कोई काम नहीं है लाइफ दिए जाने का। ना ये लाइफ बीवी के लिए दी गई, ना बच्चों के लिए दी गई, ना जॉब के लिए दी गई, ना मकान के लिए दी गई, ना सवारी के लिए दी गई। जितने दिन आपको टाइम गुजारना है, उतने दिन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। इसलिए ये तुम्हारी जरूरत रहेंगी, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको. और जो जरूरत की चीज होती है वो काम चलाऊ होती है. मकसद नहीं होता वो जिसके लिए लाइफ उसको नहीं, उसके लिए नहीं दी गई. इन चीजों को इस्तेमाल करके अल्लाह से ताल्लुक बनाना है. और अल्लाह का ताल्लुक इसके बगैर नहीं बनेगा. इसलिए एक मेहनत और मुजाहिदे का रास्ता है. तो इस तरह से आदमी हाल से मकाम की तरफ सफर करता है. हाल में तकल्लुफ रहता है. नहीं, फॉर्मेलिटी के माने में भी नहीं है. तकल्लुफ का मतलब है आप कभी कर सकते हो काम इंटेंशनली और कभी नहीं कर पाते. अब इसको यूं समझ लीजिए, आपके हुजूर ने फरमाया कि जब तुम दुआ करो तो रो. फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर रोना ना आए तो बतकल्लुफ रो, रोने की सूरत बनाओ.
If you cannot cry, then the bab used over here to make yourself appear to cry.
बतकल. तो हाल में क्या होता है? तकल्लुफ रहता है.
In hal, this is the thing, you have to make yourself appear to.
मकाम में तकल्लुफ नहीं रहता.
In maqam, it's natural.
हाल की मिसाल ऐसी लिखी है सूफिया ने कि जैसे नया ड्राइवर.
So the sufia mentioned like a new driver, for example, in hal.
और मकाम वाला पुराना ड्राइवर.
An experienced driver, someone in maqam.
नया टाइपिस्ट.
A new person is typing.
पुराना टाइपिस्ट.
Someone who's very skilled in this.
जो टाइप करने का बहुत माहिर होता है वो तो देख भी नहीं रहा होता वहाँ पे.
Person is very skilled in this.
इतना बेतकल्लुफी से उसका हाथ चल रहा होता है और इतनी फास्ट चल रहा होता है कि पूरी चीज करता है टाइप और एक भी गलती उसमें नहीं होती. जो आदमी नया ड्राइवर होता है वो कैसे चला रहा होता है अटका अटका के एकदम. लेकिन जो माहिर होता है वो तो उंगली पे फिराता रहता है. हमारा एक दोस्त है वो तो अंगूठे पे ही फिराता रहता है, पैर के दोनों हाथ फारिग रखता है.
तो
मकाम वाला जो है ना उस जगह पर आता है. ये किस में होती है बात, ये है समझने की चीज. ये होती है सिफात ईमान में. हर सिफत ईमान में इतनी पुख्तगी, इतना रुसूख होता है कि उसमें हर सिफत में माहिर हो जाता है बंदा. जितने काम बंदे से सादिर होते हैं वो सिफत की वजह से ही होते हैं.
any of these things that a person is able to take part in or be patient through, that is from the characteristics they've been given.
Agar sifat bani hui nahi hogi to kaam nahi banta sahi.
If the characteristic wasn't there, then they can actually work.
Sifat agar bani hui nahi hai to kabhi hoga kabhi nahi hoga.
The characteristic wasn't firm within them, and sometimes they do it, sometimes they won't.
Aap samajh gaye honge ki hum jis condition se guzarte hain kyon guzarte hain.
You would think that the condition that we travel through, why?
क्योंकि अंदर से सिफत बनी हुई नहीं है इसलिए कभी हमारी तबीयत उधर चलती कभी उधर चलती.
Our condition, because it's not firm within us, that's why sometimes we're here.
अगर मकाम वाली कैफियत रहेगी ना तो बिल्कुल नहीं होता वैसा, बिल्कुल भी नहीं होता.
If we have the kafiya, the feeling, the state of a maqam, then we wouldn't have this trouble.
तो ईमान की हर सिफत अंदर से बन जाना.
So every characteristic of iman has to become firm within us.
तो फिर ईमान का हर तकाजा पूरा करता है बंदा.
Then as a result, every result of iman.
और जब बंदा हर तकाजे को पूरा करता है तो अल्लाह का कामिल बंदा अंदर बाहर से हो जाता है.
Then when they're able to fulfill every order and every result of iman, then they internal and external become.
और अल्लाह तबारक व तआला के पास बाहर से ज्यादा अंदर है. बेरून से ज्यादा अंदर की अहमियत है अल्लाह के पास.
So it's more of an internalization than external reality.
और बाहर की भी वैसी अहमियत है.
But there's still also within the external is a reality.
अंदर अच्छा हो बाहर खराब हो ऐसा होता नहीं.
It's not that some will be perfect inside but not on the outside.
बाहर अच्छा हो अंदर खराब हो ऐसा बहुत होता है.
It does happen that the external looks perfect but internal they're rotting.
अल्लाह का पूरा बंदा आदमी जब तक नहीं बनता जब तक अंदर बाहर दोनों अच्छा ना हो जाए.
Person will not be a true slave of the servant of Allah until the external and internal are both perfected for Allah.
अल्लाह के पास जैसे बाहर है वैसे अंदर भी बाहर ही है.
That which is for Allah subhanahu wa ta'ala, then what's internally will make itself apparent for Allah.
नहीं, जो बाहर की चीज जैसे अल्लाह के सामने ओपन है अंदर की चीज भी वैसे ही ओपन है.
Oh, okay. That which is apparent to Allah, that can be seen from Allah by Allah externally, the internal can be seen so easily by Allah Ta'ala as well.
तो आदमी के आदमी का जो outing वाला हिस्सा है, जैसे वो अल्लाह के सामने है, inside वाला हिस्सा भी, सीरत वाला हिस्सा भी, सिफात वाला हिस्सा भी, वैसे ही अल्लाह पाक के सामने open है.
Just as our external positions are open to Allah, our internal is just as available for Allah to see.
अगर किसी आदमी के अंदर में सिफात ईमान बने हुए नहीं है,
if these characteristics are not made firm within any individual,
और जाहिर से एक आदमी ने अपने आप को सही कर लिया है,
and on the external he's perfected,
शरीयत के मुआफिक कर लिया, सुन्नत के मुआफिक कर लिया,
on the path of sharia and sunnah,
और अंदर से गड़बड़ है,
but inside is this turmoil,
तो ऐसा है जैसे अल्मोनियम के पेपर में गोबर भरा हुआ है.
So it's as if we have aluminum, but inside the aluminum is feces, cow and feces sitting.
अगर आप किसी को गिफ्ट दें और उसको सामने वाले को पता हो कि अंदर गोबर है और ऊपर से एल्युमिनियम है, तो आप क्या फील करोगे?
If you give someone as a gift to someone, they see this aluminum ball, but inside is this feces, but they knew that's what's inside, how would they feel?
ऐसा बंदा कैसा रहेगा?
How would the person respond?
और अगर बाहर भी गोबर ही हो, अंदर भी गोबर हो, तो वो बंदा कैसा रहेगा?
How would be the person externally, internally, or feces?
तो अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए अंदर बाहर दोनों सही होना पड़ता है. वो बनने के वास्ते सिफात ईमान बनना पड़ता है. उसके लिए हाल से निकाल के मकाम पे जाना पड़ता है. उसके लिए मुखालिफत खत्म होनी पड़ती है नफ्स में से. इस मुखालिफत के खत्म होने से मुतमईन बनता है, इसलिए उसके बाद अल्लाह के बंदों में शामिल होता है. फदखुली फी इबादी, अल्लाह फरमाने अब आ तो मेरे बंदों में.